सभोपदेशक अध्याय सात। अब हम सभोपदेशक की पुस्तक अध्याय सात से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। जब हम सभोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं तब ये जानना जरूरी है कि सुलेमान ने अपने अंतिम दिनों में ये पुस्तक लिखी थी। सुलेमान अनेक अनुभवों एवं अध्ययनों के द्वारा जीवन के अर्थ और उद्देश्य को ढूंढने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जीवन निरासार और निराशाजनक है। जीवन का कौन सा ऐसा पक्ष था जिसका उसे ज्ञान ना था? ज्ञान, धन, ख्याति, वस्तुकला और जीवन का आनंद। सुलेमान एक भूल जरूर की थी कि उसने जीवन के अर्थ को सूर्य के नीचे खोजा था। यदि संसारिक जीवन आपका उद्देश्य सही तक सीमित है तो समय आएगा जब आपके जीवन का भी ऐसा ही अंत सुलेमान की तरह होगा और आप भी कहेंगे कि जीवन अर्थहीन है। जीवन किसी काम का नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है, निराशा ही निराशा है। यहां परमेश्वर का प्रयोजन ये नहीं था कि आप सांसारिक जीवन जिए। परमेश्वर चाहता था कि आप उसके पुत्र में सच्चे जीवन का अनुभव करें। योहन्ना की पत्री में हम पढ़ते हैं, पहला योहन्ना 5:11-12, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। वहां जीवन है, वहां जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य है। तब आप यीशु मसीह में जीवन को ढूंढ लेते हैं। परमेश्वर विहीन जीवन अर्थात आत्मिक स्तर को पाने के अतिरिक्त शारीरिक चेतना पर आधारित जीवन मनुष्य को निराशा में ले जाएगा, जैसा कि आजकल के दर्शन शास्त्र ने निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का तर्क मनुष्य को निराशा में ले जाता है। तब यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में आशा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मनुष्य को अनुभवों के ऊपरी स्तर में प्रवेश करके तर्क रहित धार्मिक अनुभवों को प्राप्त करना होगा कि जीवन की सच्चाई न खोज पाने की अवस्था में वो निराशा से कैसे बचे। दर्शन शास्त्र तर्क के द्वारा मनुष्य को निराशा में ले जाता है, जिससे निकलने का एक ही समाधान है कि मनुष्य तर्क की सीमा से बाहर निकल आए और तर्कहीन बन जाए। मनुष्य विश्वास में प्रवेश करके तर्क रहित धार्मिक अनुभवों को प्राप्त करे ताकि वो निराश न हो और उसकी आशा बंधी रहे। समस्त अनुभवों के बाद सुलेमान का भी यही निष्कर्ष था। सभा उपदेशक की पुस्तक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये निराशा की पुस्तक है। सभा उपदेशक 1:14, देखो ये सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जिस निष्कर्ष पर सुलेमान पहुंचा था वो सांसारिक निष्कर्ष है, मानवीय बुद्धि के आधार पर परमेश्वर से रहित निष्कर्ष। इस कारण इस निष्कर्ष को बाइबल सिद्धांत संबंधित आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे मनुष्य के विषय में पढ़ रहे हैं जो जीवन के अर्थ को खोज रहा है परंतु उसने परमेश्वर को अपने आप से अलग कर दिया है। ऐसी खोज मानवीय तर्क के परिणाम है जो ईश्वरीय ज्ञान से परे होते हैं। अतः यहां जो भी निष्कर्ष दिए जा रहे हैं वे ऐसी ही पृष्ठभूमि से आए हैं। यदि आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जीवन के संबंध में आपके निष्कर्ष हमेशा भिन्न होंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। परमेश्वर उसी समय भविष्य में देख रहा था कि एक दिन इसराइल राष्ट्र परमेश्वर की प्रभुता से असंतुष्ट होकर मानवीय राजा के लिए आग्रह करेगा। इस कारण उसने इसराइल में राजा नियुक्त किए जाने से 400 वर्ष पहले मूसा की व्यवस्था में राजा के लिए नियम स्थापित कर दिए थे। परमेश्वर जानता था कि 400 वर्ष के बाद उसकी प्रजा शमूएल के पास जाकर कहेगी, हमें भी दूसरे राज्यों की तरह राजा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वे क्या शब्द बोलने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने इन नियमों को व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जोड़ा था। व्यवस्था विवरण के 17वें अध्याय में एक रोचक बात कही गई है, जहां परमेश्वर ने राजाओं के लिए नियम स्थापित किए। इस अध्याय के पद 14 के प्रारंभ में वो कहता है, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, और बिल्कुल वही बात उसकी प्रजा ने शमूएल से कही, सब जातियों की नाई हमारे ऊपर भी राजा ठहरा दे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 15 से 20 पद, जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले आवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता, और वो बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना, और वो बहुत स्त्रियां भी न रखें, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वो उसे अपने पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखें, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दहने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। लेकिन पद 17 कहता है, वो बहुत स्त्रियां भी ना रखें, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। इस गद से ऐसा लगता है कि परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को जानता है। परमेश्वर ने व्यवस्था हमें सुधारने और चेतावनी देने के लिए बनाई। यहां यूं ही नहीं लिखी गई, वचन में लिखा है, जब तुम राजा ठहराओ तब एक बात जो राजा को नहीं करनी चाहिए वो ये है, बहुत सी स्त्रियां ना रखें, कहीं वे उसका दिल ना बदल दे। आइए पहला राजा का अध्याय 10 खोलें। जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखें कि उसे सोना चांदी और घोड़े अपने लिए इकट्ठे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जैसा कि हम पद 14 में पढ़ते हैं, पहला राजा 10 अध्याय 14 से लेकर 19 तक, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किकार था, इससे अधिक सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और दोगली जातियों के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई, एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई, एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लेबनोनी वन नाम भवन में रखवा दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का सिराना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने के स्थान की दोनों अलंग पर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। पद 21। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था। पद 27 और 28। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुल्लर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए गए दाम पर लिया करते थे। सुलेमान को मिस्र पर निर्भर नहीं होना था और ना घोड़े जमा करने थे, परंतु उसने ये सब किया। जैसा कि हम पहला राजा अध्याय 11 में पढ़ते हैं, पहला राजा अध्याय 11 1-3 पद। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हिती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इसराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रेखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। 400 साल पहले परमेश्वर ने इस बात की कड़ी चेतावनी दी थी कि तुम ऐसा ना करना। परमेश्वर ने इस बात को चेतावनी के साथ मना किया था कि वे तुम्हारे मन को बहका देगी। सुलेमान ने सोचा वो परमेश्वर को गलत साबित कर सकता है। उसने सोचा था कि वो परमेश्वर से ज्यादा जानता है। उसने सोचा था कि वो व्यवस्था से कहीं अधिक जानता है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को मनुष्य से अधिक जानता है। हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी है क्योंकि वो जानता है कि इन आज्ञाओं को तोड़ने का फल क्या होगा। पहला राजा 11 अध्याय पद 4-7 तक। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की एस्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि से बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। यदि आप यरूशलेम की यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी जैतून के पहाड़ के ऊपर जाती है, ये वही पहाड़ी है जहां सुलेमान ने ये सब बनाया था जो यरूशलेम के सामने है। ये ठीक घाटी के पार है जो पूरे यरूशलेम के सामने है। वहां उसने ये मूर्ति पूजक मंदिर बनवाए। सिदोनियों के लिए एक स्थान, एक घृणित वस्तु मुआबियों के लिए और अमोनियों की घृणित वस्तु अमोन की संतानों के लिए बनवाई। पहला राजा 11 अध्याय 8 पद। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। उसने हर बार विभिन्न स्थानों से जब स्त्रियां व्याही, उसके लिए एक मंदिर भी बनवाया ताकि वो पहाड़ी पर जाकर अपने देवता को धूप जला सके और सारे इसराइली उसको देख सके। इस तरह सुलेमान ने अपना मन परमेश्वर से हटा लिया। परमेश्वर से अपना मन हटाने के कारण उसने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खो दिया। अब तो वो वृद्ध हो गया है और वो अपना अनुभव लिख रहा है। यहोवा की महानता और इसराइल के परमेश्वर की चेतना उसके मन से जा चुकी थी। वो परमेश्वर के बिना ही जीवन ढूंढ रहा था और वही पाता है कि परमेश्वर के बिना जीवन में खालीपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सुलेमान के निष्कर्ष से जीवन और मृत्यु के संदर्भ में आत्मिक दर्शन निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तर्क परमेश्वर से अलग है। इस पुस्तक को आप इसी दृष्टि से देखना है। मानवीय ज्ञान संभवतः अपनी अभिव्यक्ति में उत्कृष्ट होने पर भी परमेश्वर के बिना मूर्खता मात्र है। जैसे परमेश्वर रोमियों की पुस्तक अध्याय 1 में कहता है, रोमियो 1:22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। यदि आप परमेश्वर से दूर होकर मानवीय ज्ञान में जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं तो ये केवल मूर्खता ही होगी। आपकी बुद्धि आपसे मूर्खता का काम करवाएगी। सभा उपदेशक अध्याय 7 में नीति वचन की एक श्रृंखला है। सुलेमान की बुद्धि नीति वचनों का एक भंडार थी। हमने नीति वचन की पुस्तक के अध्ययन में देखा था जिसमें अधिकतर नीति वचन सुलेमान द्वारा लिखे गए हैं। अध्याय 7 में भी वो नीति वचन ही कहता है जो एक दूसरे से मेल तो नहीं खाते परंतु बुद्धि की बातें हैं। सभा उपदेशक अध्याय 7:1, अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। अच्छा नाम कमाना महंगे इत्र से भी अच्छा है। सभा उपदेशक अध्याय 7:1 में आगे लिखा है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ऐसा लगता है कि इन सुंदर शब्दों को निराशा में लिखा गया है। क्या ऐसा नहीं है? ओह, एक व्यक्ति का मृत्यु का दिन जन्म के दिन से कितना उत्तम है। वो निराशा में डूब चुका था क्योंकि वो परमेश्वर से हटकर जीवन का अर्थ ढूंढता है। इस दशा में ये ठीक होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन महिमा से भरा है। सभा उपदेशक अध्याय 7:2-4, जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। उसने मन ही मन कुढ़ते हुए जीवन को देखा था, उसने जीवन की खुशियों और आनंद को भी देखा था, क्योंकि वो परमेश्वर से हटकर जीवन की खुशियां और आनंद ढूंढ रहा था। इसलिए उसे ऐसा अनुभव हुआ कि सब कुछ व्यर्थ है और जीवन एक दिखावा है। इस कारण वो एक ऐसा वृद्ध पुरुष हुआ जिसके जीवन में कटुता भरी हुई थी। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 5 से लेकर 10 तक। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुटकी उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हड्डी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, ये भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नाश होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। ये न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे, परंतु वे जो कहते हैं वो वास्तव में सच नहीं है, क्योंकि उन दिनों बहुत सी सुविधाएं जो आज है नहीं थी। निस्संदेह पुराने दिन कुछ बातों में अच्छे थे, परंतु यदि सुविधा और लाभ की बात देखी जाए तो दोनों पक्षों में ही कुछ न कुछ लाभ है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 11 से लेकर 12 तक। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। धन अच्छा है, लेकिन बुद्धि उन लोगों को जीवन देती है जिन लोगों में ज्ञान होता है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 13। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? कौन परमेश्वर के तुल्य कार्य कर सकता है? परमेश्वर के कार्यों के सामने हम शक्तिहीन और असहाय हैं। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 14 और 15। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। मैंने भले मनुष्य को मरते हुए देखा है। धर्मी होने की उपरांत भी लोग जवानी में ही मर जाते हैं। दुष्ट मनुष्य दीर्घ आयु होता है। यही कारण है कि सुलेमान ने ऐसा निष्कर्ष निकाला। ये आत्मिक निष्कर्ष नहीं था, ये बाइबल के निष्कर्ष अनुसार नहीं है। मेरा मतलब ये बुद्धिमता समझदारी से नहीं है, ये ईश्वरीय नहीं है। ये वो मनुष्य है जो जीवन को निहार रहा है, ये देखकर कि धर्मी अपनी जीवन में और अधर्मी बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। ये सच में मानवीय बुद्धि है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 16। अपने को बहुत धर्मी ना बना, धार्मिकता में बहुत ना उलझ। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 16 में आगे लिखा है, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। ये एक गलत निष्कर्ष है। धर्मी सदा जवानी में नहीं मरते। परमेश्वर के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी आयु बहुत है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 17। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, दुष्टता की अति मत करो। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 17 में आगे लिखा है, और ना मूर्ख हो तो क्यों अपने समय से पहले मरे। मानवीय तर्क, सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 18 से लेकर 20 तक। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। यहां वो सही था। बाइबल कहती है रोमियो 3 अध्याय 10 पद, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल कहती है रोमियो 3:23 पद, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये एक मानवीय विचार है जो ठीक है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 21, जितनी बातें कही जाएं सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है। जो दूसरों की बातों पर कान लगाता है वो अपने बारे में बहुत ही कम कोई अच्छी बात सुनता है। दूसरों की वार्तालाप को न सुने जो आपके बारे में की जाती है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि वे आपकी ही बुराई कर रहे हैं या शाप दे रहे हैं। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 22 और 23, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को शाप दिया है। ये सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मैंने ज्ञान से सिद्ध किया, परंतु मनुष्य के ज्ञान के बारे में वचन कहता है। 1 कुरिन्थियों 3:19 पद, परमेश्वर के निकट मूर्खता है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 23 से लेकर 27 तक, मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु ये मुझसे दूर रहा। वो जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है जानू। और मैंने मृत्यु से भी दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उसे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है, एक्लीसिया को सेप्टुजेंट से अनुवाद किया गया है, इसका अर्थ समूहों में एकत्रित होना, या इसे तर्क वितर्क भी कह सकते हैं। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 27 और 28, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और ये बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। 1000 पत्नियां रखकर भी सुलेमान को एक संतोषजनक स्त्री नहीं मिली, परंतु पुरुषों में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसकी समझ में श्रेष्ठ था। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह समझने के लिए उसे विवाह करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार गलती करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 5-6-7 बार विवाह करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार एक व्यक्ति की गलती हो। आप कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसने कई बार विवाह किया है, किसी के चरित्र के बारे में अच्छा न्याय नहीं है। हमारी प्रवृत्ति नहीं बतला सकती है कि हम अगली बार ज्यादा बुद्धिमानी का चुनाव करेंगे, परंतु हमारी मनोवृत्ति तो वही रहती है। यदि आपको एक धर्मी स्त्री मिल जाए तो नीति वचन 31 अध्याय 10 पद उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। वो हजारों में एक होती है। आपको इनमें से एक मिलती है जो प्रभु से प्रेम करती है। ऐसी पत्नी पाना कितनी शोभ्यमान और आकर्षक बात है, जो परमेश्वर से प्रेम करती हो, जो प्रभु को पुकारती है। कैसी आशीष! वो हमारे जीवन के लिए कितनी बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। सभा उपदेशक अध्याय 7 पद 29। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। परमेश्वर ने हमें सीधा बनाया, लेकिन हमने कैसी विपरीत खोज की है।